एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने दर्शन और नैतिकता की जड़ों को जैसे हिलाकर रख दिया।
हाँ, एक ऐसी किताब जो आज भी उतनी बहस छेड़ती है जितनी शायद 100 साल पहले छेड़ती थी।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक नीचे की बेहद चर्चित और अक्सर शायद गलत समझी जाने वाली किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल,
यानी भले और बुरे से परे। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस थोड़ी मुश्किल किताब के अलग अलग पहलुओं को खोलते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि नीचे के कुछ सबसे दमदार विचारों को आपके सामने रखें एक सरल तरीके से।
मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
तो सवाल ये है कि 1886 में लिखी गई ये किताब आज हमारे लिए मतलब क्यों जरूरी है? क्यों हमें नैतिकता, सच्चाई और हमारे मूल्यों पर नीचे के उठाए सवालों पर आज भी सोचना चाहिए?
मेरे ख्याल से इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि देखिए, आज भी हम सही गलत अच्छे बुरे के बने बनाए पैमानों में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं।
हाँ, ये तो है।
समाज क्या कहता है, परंपरा क्या कहती है, नीचे हमें इन सब पर एक तरह से सवाल उठाने की हिम्मत देते हैं।
अच्छा,
वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई, क्या हमारी ये जो अच्छाई है वो वाकई हमारी अपनी है या कहीं से मतलब उधार ली हुई है।
ये तो सोचने वाली बात है वाकई। इससे पहले हम किताब की गहराइयों में उतरें, थोड़े इस अनोखे विचारक फ्रेडरिक नीचे के बारे में जान लेते हैं।
हाँ जरूर। फ्रेडरिक नीचे 1844 से 1900 तक जर्मनी के एक दार्शनिक थे, लेकिन सिर्फ दार्शनिक नहीं।
अच्छा,
और कमाल की बात है, सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दिया गया था।
सिर्फ 24 साल में? और भाषाओं और पुराने ग्रंथों की यही समझ उन्हें खास नजरिया देती थी शायद।
बिल्कुल, वो देख सकते थे कि अच्छा बुरा जैसे शब्द और विचार समय के साथ कैसे बदले हैं, कैसे गढ़े गए हैं। वो कोई मतलब यूनिवर्सिटी के शांत कमरे में बैठकर लिखने वाले दार्शनिक नहीं थे। उनकी अपनी जिंदगी काफी उथल पुथल भरी रही।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है बीमारियां, अकेलापन।
हाँ, बीमारियों और अकेलेपन से जूझते रहे। शायद इसी वजह से उनकी सोच में एक तरह की बेचैनी, एक गहराई दिखती है जो सिर्फ किताबी नहीं लगती।
और उनकी लिखने की शैली भी अलग थी, है ना? वो सूत्र जैसी बातें लिखते थे।
हाँ बिल्कुल, वो लंबे लंबे तर्क लिखने की बजाय अक्सर छोटी तीखी सूत्र जैसी बातें लिखते थे जिन्हें एफोरिज्म्स कहते हैं।
एफोरिज्म्स?
हाँ, ये एकदम से चौंकाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। और उन्होंने दर्शन को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा,
मतलब
उन्होंने उसे मनोविज्ञान, संस्कृति, यहां तक कि व्यक्ति के अपने पूर्वाग्रहों से जोड़कर देखा। वो पूछते थे कि दार्शनिक जो इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कहीं उनके पीछे उनकी अपनी कोई दबी हुई इच्छा या जरूरत तो काम नहीं कर रही।
अरे वाह,
मतलब वो दर्शन को सिर्फ दिमागी कसरत नहीं बल्कि जिंदगी से जुड़ा हुआ मानते थे।
चलिए अब किताब पर आते हैं। भले और बुरे से परे, इस टाइटल का आखिर मतलब क्या है?
देखिए, किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार यही है कि जिसे हम पारंपरिक तौर पर अच्छा या बुरा मानते हैं,
हाँ,
वो कोई आसमान से उतरी हुई या हमेशा से चली आ रही सच्चाई नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
नीचे कहते हैं कि ये इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। ये खास ऐतिहासिक दौर में कुछ खास तरह के लोगों की जरूरतों, उनकी ताकत या शायद उनकी कमजोरी और उनके आपसी संघर्ष से पैदा हुई हैं।
तो क्या वो कह रहे हैं कि अच्छाई बुराई जैसी कोई चीज होती ही नहीं?
नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहे, बल्कि वो ये पूछ रहे हैं कि ये पैमाने बनाए किसने और क्यों।
अच्छा, ये सवाल है।
हाँ, वो खासकर पश्चिमी दुनिया की नैतिकता जो यहूदी ईसाई परंपरा से निकली है, उसकी बहुत कड़ी आलोचना करते हैं। उनका सवाल है, क्या हम इन पुराने विभाजनों से आगे बढ़ सकते हैं?
आगे बढ़कर क्या?
आगे बढ़कर इंसान की असल क्षमता और उसकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए नए मूल्य, एक नई तरह की नैतिकता, क्या हम वो बना सकते हैं? उन्हें लगता था कि उनके जमाने का जो दर्शन था वो सिर्फ हवा में बातें कर रहा था, जिंदगी की सच्चाइयों से मतलब कट सा गया था।
इसीलिए शायद किताब का सबटाइटल है भविष्य के दर्शन की प्रस्तावना, है ना? ये सिर्फ पुरानी सोच की आलोचना नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा भी है।
बिल्कुल, और किताब कोई सीधी सादी कहानी या एक तर्क की तरह नहीं चलती।
हाँ, ये तो मैंने सुना है, ये छोटे छोटे विचारों, निबंधों का एक संग्रह जैसी है।
हाँ बिल्कुल, सूत्रों और छोटे निबंधों का संग्रह है। इसमें कई परतें हैं, जैसे दार्शनिकों के अपने छुपे हुए इरादे क्या होते हैं, समाज में नैतिकता कैसे बनती बिगड़ती है, सच्चाई असल में क्या है, क्या वो बस एक नजरिया है? धर्म का हमारी सोच पर क्या असर होता है?
और वो स्वतंत्र चेतना वाली बात भी।
हाँ, और सबसे बढ़कर स्वतंत्र चेतना, फ्री स्पिरिट, यानी आजाद सोच वाले इंसान का विचार। तो ये किताब पाठक से थोड़ा धीरज और खुले दिमाग की मांग करती है, ये सीधी नहीं है।
तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, किताब के कुछ खास हिस्सों पर नजर डालते हैं, और शुरुआत तो दार्शनिकों पर ही सवाल उठाकर होती है।
हाँ, पहली अध्याय में नीचे सीधे दार्शनिकों पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जो दावा करते हैं ना कि वो बस सत्य की खोज कर रहे हैं।
हाँ, जो कि सभी दार्शनिक करते हैं।
बिल्कुल, वो कहते हैं असल में वो अनजाने में अपने दिल की इच्छाओं, अपनी परवरिश, अपनी संस्कृति के असर में होते हैं। उनकी जो बड़ी बड़ी वस्तुनिष्ठ लगने वाली बातें हैं वो अक्सर उनकी अपनी निजी जरूरतों का ही पर्दा होती है।
अच्छा, ये तो बड़ी बात कह दी उन्होंने।
और वो तो सत्य की इच्छा, विल टू ट्रूथ, पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं।
सच जानने की इच्छा पर ही सवाल।
हाँ, कि क्या सच जानना हमेशा अच्छा ही होता है? क्या कभी कभी कोई भ्रम या एक खास तरह का नजरिया जिंदगी जीने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होता? यहीं पर उनका वो परिप्रेक्ष्यवाद, पर्सपेक्टिविज्म का विचार आता है।
परिप्रेक्ष्यवाद?
हाँ, कि कोई एक अंतिम वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है, बल्कि हर चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं, और हर नजरिया किसी खास जगह, किसी खास जरूरत से पैदा होता है। कोई भगवान की आंख वाला नजरिया नहीं है।
ये तो पूरी पश्चिमी दर्शन परंपरा के लिए एक चुनौती है। और इसी पृष्ठभूमि में वो स्वतंत्र चेतना यानी फ्री स्पिरिट की बात करते हैं। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में बताइए।
फ्री स्पिरिट या स्वतंत्र चेतना, ये नीचे का एक तरह का आदर्श है। ये वो इंसान है जो समाज, परंपरा, धर्म के बंधनों से, मतलब आजाद होकर सोच सकता है,
जो लीक से हटकर चले।
हाँ, उसे भीड़ से अलग चलने में डर नहीं लगता, वो अनिश्चितता में जी सकता है, अकेलेपन को सह सकता है। ये लोग सिर्फ बनी बनाई नैतिकता को मानते नहीं हैं।
तो क्या करते हैं?
वे सवाल उठाते हैं और शायद नए मूल्य बनाने की कोशिश करते हैं। नीचे ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग अक्सर दुनिया में सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह पाते, उन्हें कई बार मुखौटे पहनने पड़ते हैं।
दिलचस्प, यानी आजाद सोच के लिए एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद नीचे धर्म की तरफ मुड़ते हैं। धर्म के बारे में उनका क्या कहना है? क्या वो धर्म को पूरी तरह नकारते हैं?
पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि वो धर्म को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नजरिए से देखते हैं। वो मानते हैं कि भले ही धर्म की कहानियां शाब्दिक रूप से सच ना हो,
हाँ,
लेकिन वो इंसान की गहरी जरूरतें पूरी करती हैं, जैसे जिंदगी को कोई मतलब देना, मुश्किलों में सहारा देना, लोगों को एक साथ जोड़ना।
ये तो सकारात्मक बातें हुई।
हाँ, लेकिन वो धर्म की, खासकर ईसाई धर्म की, बहुत कड़ी आलोचना भी करते हैं। उसे वो दास नैतिकता, स्लेव मोरालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं।
दास नैतिकता?
हाँ, और उनके हिसाब से ये दास नैतिकता जिंदगी की ताकत और खुशी के खिलाफ जाती है, उसे दबाती है।
ये दास नैतिकता, ये शब्द बार बार आता है, इसे थोड़ा और खोलेंगे, खासकर उनके उस अध्याय के संदर्भ में जिसका नाम है नैतिकता का प्राकृतिक इतिहास।
हाँ जरूर, ये नीचे के सबसे मौलिक और शायद सबसे विवादास्पद विचारों में से एक है। वो कहते हैं कि इतिहास में मोटे तौर पर दो तरह की नैतिकताएं रही हैं।
दो तरह की? कौन सी?
पहली स्वामी नैतिकता, मास्टर मोरालिटी। ये ताकतवर, ऊंचे, कुलीन तबके के लोगों से निकली। उनके लिए अच्छा वो था जो ताकतवर हो, गर्व करने लायक हो, जिंदगी का जश्न मनाता हो, क्रिएटिव हो।
अच्छा,
और बुरा क्या था उनके लिए?
बुरा मतलब जो आम है, साधारण है, कमजोर है, झुंड का हिस्सा है।
ठीक है, ये हुई स्वामी नैतिकता। और दूसरी
है दास नैतिकता, स्लेव मोरालिटी। ये कमजोर, दबे हुए, उत्पीड़ित लोगों से निकली। ये रेसेंटिमा, इस शब्द को समझना जरूरी है।
रेसेंटिमा, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है मन में दबा हुआ द्वेष, कड़वाहट, गुस्सा, जलन, खासकर उनके प्रति जो ताकतवर है।
अच्छा, तो ये नैतिकता गुस्से और जलन से पैदा होती है?
हाँ, नीचे के अनुसार, क्योंकि वो ताकतवरों का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते तो वो उनके मूल्यों को ही उलट देते हैं।
उलट देते हैं कैसे? जो स्वामी नैतिकता में अच्छा था, यानी ताकत, गर्व, स्वास्थ्य, रचनात्मकता, वो दास नैतिकता में बुराई बन जाता है। और जो स्वामी की नजर में बुरा था, जैसे विनम्रता, दया, सहानुभूति, बराबरी, वो दास नैतिकता में सबसे बड़ी अच्छाई बन जाता है।
अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया।
हाँ, और नीचे का मानना था कि पश्चिमी दुनिया में, खासकर ईसाई धर्म के प्रभाव से, इसी दास नैतिकता का बोलबाला हो गया है, और इसने इंसान की जो ऊंचाई छूने की क्षमता थी, जो उसकी रचनात्मक शक्ति थी, उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है।
ये तो बहुत ही, मतलब, क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम आज अच्छा मानते हैं, जैसे दया, बराबरी, नीचे उसे कमजोरी की देन कह रहे हैं।
हाँ, कुछ इसी तरह का उनका तर्क है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने मूल्य कहाँ से आए हैं। क्या वो वाकई ताकत और जिंदगी की खुशी से जन्मे हैं, या किसी डर, किसी कड़वाहट, किसी रिसेंटिमेंट से? और इसी से जुड़ा है उनका विद्वानों और सच्चे दार्शनिकों के बीच का फर्क। वो अगले अध्यायों में इस पर बात करते हैं।
हाँ, हम विद्वान नाम का अध्याय है, क्या फर्क बताते हैं वो?
वो कहते हैं कि ज्यादातर विद्वान या अकेडमिक लोग बस पुरानी जानकारी को जमा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन असली दार्शनिक वो हैं जो नए मूल्य गढ़ते हैं, जो सवाल उठाने का जोखिम उठाते हैं, जो सिर्फ व्याख्याता नहीं बल्कि निर्माता होते हैं।
और फिर वो हमारे गुण वाले अध्याय में आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम शक करना तो सीख गए हैं, हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जो शायद एक गुण है।
हाँ, बौद्धिक ईमानदारी।
लेकिन शायद हम में कुछ बड़ा रचने का, किसी चीज पर गहरा विश्वास करने का साहस कम हो गया है, एक तरह की दुविधा में जीते हैं हम।
बिल्कुल, और यही वो नए दार्शनिकों के गुणों की बात करते हैं। बौद्धिक ईमानदारी तो है ही, साथ में हिम्मत, सहानुभूति, लेकिन एक ऊंचे अर्थ में, और अकेले रह सकने की क्षमता, और शायद सबसे अनोखी बात, पीड़ा को गले लगाने की क्षमता।
पीड़ा को गले लगाना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो पीड़ा से बचना चाहते हैं।
हाँ, हम बचना चाहते हैं, लेकिन नीचे का मानना है कि पीड़ा से भागने वाली सोच हमें कमजोर बनाती है। उनका मानना है कि मुश्किलों से जूझकर उन पर काबू पाकर ही इंसान मजबूत बनता है, गहरा बनता है। यही उनका वो मशहूर विचार आता है,
जो मुझे मार नहीं डालता वो मुझे और मजबूत बनाता है।
बिल्कुल, व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, ये इसी सोच से निकला है।
इसके बाद वो राष्ट्रवाद जैसी चीजों पर भी बात करते हैं ना, आठवें अध्याय में, लोग और पितृभूमि।
हाँ, वो संकीर्ण राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं और अलग अलग यूरोपीय देशों की संस्कृतियों की ताकत और कमजोरियों पर भी टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो एक आदर्श रखते हैं अच्छे यूरोपियन का।
गुड यूरोपियंस, ये कौन है?
ये वो लोग हैं जो अपनी राष्ट्रीय पहचान की सीमाओं से ऊपर उठकर सोच सकते हैं, जो यूरोप की अलग अलग संस्कृतियों का सबसे अच्छा हिस्सा लेकर कुछ नया बना सकते हैं, एक तरह से वैश्विक नागरिक जैसा।
और फिर किताब के आखिर में, नौवें अध्याय में, वो पूछते हैं कुलीन क्या है,
वॉट
इज नोबल। यहाँ वो किस बड़प्पन की बात कर रहे हैं, जन्म या पैसे वाले बड़प्पन?
नहीं, बिल्कुल नहीं। नीचे के लिए असली कुलीनता या बड़प्पन जन्म या सामाजिक स्थिति से नहीं आता।
तो फिर किससे आता है?
वो आता है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से, अपने मूल्य खुद बनाने की क्षमता से, और भीड़ से, आम सोच से एक दूरी बनाकर चलने की इच्छा और क्षमता से। इसे वो पाथोस ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। ये एक आंतरिक एहसास है अपनी अलग पहचान का, अपनी जिम्मेदारी का।
तो ये थे कुछ मुख्य अध्यायों के विचार, लेकिन इन सब विचारों के पीछे कुछ और गहरे सूत्र, कुछ बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं ना, जैसे वो सत्ता की इच्छा वाली बात।
हाँ, सत्ता की इच्छा या जोमन में विलेज और माहत, ये नीचे का एक बहुत ही केंद्रीय सिद्धांत है, हालांकि इसे लेकर काफी बहस भी हुई है।
क्या है ये सत्ता की इच्छा?
वो मानते हैं कि हर जीवित चीज में सिर्फ जीने की इच्छा, विल टू लिव ही नहीं होती, बल्कि उससे भी ज्यादा गहरी एक इच्छा होती है, अपनी ताकत को बढ़ाने की, फैलने की, हावी होने की, अपने असर को बढ़ाने की।
ये सिर्फ शारीरिक या राजनीतिक ताकत की बात है?
नहीं, सिर्फ वो नहीं। नीचे के लिए ज्ञान पाना, कला रचना, आध्यात्मिकता की खोज, यहाँ तक कि नैतिकता बनाना, ये सब भी इसी सत्ता की इच्छा के अलग अलग रूप हैं। हर चीज इसी बुनियादी ड्राइव से प्रेरित है।
अच्छा, और इसी से जुड़ा है उनका परिप्रेक्ष्यवाद का विचार, कि कोई एक सच नहीं, बस नजरिए हैं।
सही कहा, क्योंकि अगर हर चीज सत्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, तो कोई निरपेक्ष वस्तुनिष्ठ सत्य कैसे हो सकता है? कोई आसमान से देखा हुआ भगवान का नजरिया नहीं है।
तो फिर क्या है?
हम सब अपने अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं, और ये नजरिए हमारी जरूरतों, हमारी इच्छाओं, हमारी सत्ता की इच्छा से बनते हैं। नीचे कहते हैं कि असली समझ किसी एक नजरिए पर टिके रहने में नहीं है,
बल्कि
ज्यादा से ज्यादा नजरियों को समझने और अपनाने की क्षमता में है, एक तरह की बौद्धिक लोच या फ्लेक्सिबिलिटी।
और स्वामी बनाम दास नैतिकता की बात तो हमने की ही, जिसने पश्चिमी मूल्यों की नींव पर ही सवाल उठा दिया।
हाँ, मूल्यों की उत्पत्ति का ये ऐतिहासिक और मनोविज्ञानिक सिद्धांत बहुत अहम है। स्वामी नैतिकता जो जीवन की हाँ कहती है, जो मूल्य बनाती है, और दास नैतिकता जो प्रतिक्रिया में पैदा होती है, रिसेंटमेंट से, और नीचे का निदान था कि आधुनिक पश्चिमी नैतिकता, जैसे समानता, दया, ये दास नैतिकता की ही जीत है।
और ये सब मिलकर आधुनिक समाज की, जिसे वो झुंड नैतिकता या हर्ड मोरालिटी कहते हैं, उसकी आलोचना का आधार बनते हैं।
बिल्कुल, उन्हें लगता था कि लोकतंत्र, समाजवाद, नारीवाद जैसी आधुनिक विचारधाराएं वे सब लोगों को एक औसत स्तर पर लाने या लेवलिंग पर जोर देती हैं,
एक जैसा बनाने पर।
हाँ, जिससे असाधारण या विलक्षण इंसान के लिए, जो भीड़ से अलग है, उसके लिए जगह कम हो जाती है। झुंड या समूह अपनी सुरक्षा और आराम को व्यक्ति की महानता या उत्कृष्टता से ज्यादा महत्व देता है।
लेकिन वो सिर्फ निराशावादी नहीं थे ना, वो स्वतंत्र चेतना या फ्री स्पिरिट में भविष्य की उम्मीद भी देखते थे।
हाँ बिल्कुल, ये उनका जवाब है। पुराने सहारे जैसे ईश्वर में विश्वास, वो कमजोर पड़ रहे हैं। ईश्वर की मृत्यु का उनका विचार, तो अब इंसान को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा।
और ये फ्री स्पिरिट कौन है?
ये वो लोग हैं जो बिना किसी बाहरी बैसाखी के, बिना किसी बनी बनाई नैतिकता के सहारे जीने की हिम्मत रखते हैं। ये बौद्धिक पथ प्रदर्शक हैं, जो जिंदगी के साथ प्रयोग करते हैं, अपने रास्ते, अपने मूल्य खुद बनाते हैं।
और जैसा हमने पहले भी बात की, इसमें पीड़ा का भी अपना महत्व है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। उन विचारधाराओं के विपरीत जो सिर्फ सुख और आराम चाहती हैं, नीचे का तर्क है कि महानता के लिए, गहराई के लिए पीड़ा और संघर्ष जरूरी हैं। कठिनाइयों पर काबू पाने से ही ताकत, गहराई और लचीलापन बढ़ता है।
नीचे के विचार अक्सर उनके छोटे यादगार कथनों या सूत्रों में चमकते हैं, कुछ ऐसे कथन साझा करते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, उनके एफोरिज्म्स बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बहुत गहरा कथन है, शायद अध्याय 4 से, जो राक्षसों से लड़ता है उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो खुद राक्षस ना बन जाए। और यदि तुम अथाह गड्ढे में देर तक झांकते हो तो वो गड्ढा भी तुम में झांकने लगता है।
दा, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब किसी भी तरह की लड़ाई, चाहे वो नैतिक हो या कोई और, उसके अपने खतरे हैं। बुराई से लड़ते लड़ते खुद बुराना बन जाना।
हाँ, और अस्तित्व के जो अंधेरे पहलू हैं, उनको समझने की कोशिश में कहीं खुद उनमें न खो जाना, एक तरह की चेतावनी है ये।
एक और कथन है जो उनके परिप्रेक्ष्यवाद का सार लगता है। कोई नैतिक घटनाएं नहीं होती, केवल घटनाओं की नैतिक व्याख्या होती है।
बिल्कुल, ये सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ नैतिकता को नकारता है। कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती।
हम उसे अच्छा या बुरा कहते हैं?
हाँ, हम उसे अपनी समझ, अपने मूल्यों, अपने नजरिए के हिसाब से अच्छा या बुरा कहते हैं। नैतिकता मानवीय व्याख्या है, कोई बाहरी सच्चाई नहीं। ये तो जिम्मेदारी सीधे हम पर डाल देता है।
और ये वाला तो आज के जमाने में भी कितना सच लगता है। व्यक्तियों में पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, दलों, राष्ट्रों और युगों में यह नियम है।
हाँ हाँ, ये भीड़ की मानसिकता पर, ग्रुप थिंक पर एक तीखी टिप्पणी है। जब लोग समूह में होते हैं तो अक्सर ऐसी हरकतें कर जाते हैं, ऐसी बातें मान लेते हैं जो अकेले में शायद कभी ना करें। समूह अक्सर तर्कहीन हो जाते हैं।
और उनका शायद सबसे मशहूर कथन, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जो मुझे नष्ट नहीं करता वो मुझे मजबूत बनाता है।
हाँ, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि मुश्किलों को, विपत्ति को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक दर्शन है। हर चुनौती, हर चोट हमें कुछ सिखा सकती है, हमें पहले से बेहतर, ज्यादा मजबूत बना सकती है। आत्मविजय का दर्शन।
एक और है जो थोड़ा अलग सा लगता है, शायद ज्यादा सकारात्मक। जो प्रेम से किया जाता है वो हमेशा भले और बुरे से परे होता है।
हाँ, ये दिलचस्प है। शायद ये इशारा है कि जब हम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, जुनून से, प्रेम से करते हैं, चाहे वो कला हो, प्रेम संबंध हो या कोई और रचनात्मक काम, तो वो समाज के बनाए हुए अच्छे बुरे के पैमानों से ऊपर उठ जाती है। वो अपनी शर्तों पर होती है।
ये सारे विचार सिर्फ अकादमिक या किताबी नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू करने की कोशिश कर सकते हैं।
बिल्कुल, नीचे के विचार सिर्फ दर्शन की कक्षाओं के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं।
कैसे? मतलब अगर कोई श्रोता सोचे कि मैं इन विचारों से क्या सीख सकता हूँ, तो पहला कदम क्या हो सकता है?
शायद सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने मूल्यों पर सवाल उठाना, खुद से पूछना, ये जो बातें मैं सही या गलत, अच्छा या बुरा मानता हूँ या मानती हूँ, ये कहाँ से आई हैं? क्या ये वाकई मेरी अपनी सोच का नतीजा है, या बस मैंने अपने आसपास के लोगों से, समाज से, परिवार से, धर्म से बिना सोचे समझे अपना ली है? नीचे हमें अपनी खुद की सच्ची, प्रामाणिक मूल्य व्यवस्था बनाने को उकसाते हैं।
जैसे कि कोई उदाहरण?
जैसे हम अपनी नौकरी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए या उसमें कोई और मतलब भी ढूंढते हैं? हम रिश्ते क्यों निभाते हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि समाज कहता है या उनमें वाकई कोई गहराई, कोई अपनापन है? ये सवाल पूछना पहला कदम है।
और दूसरा कदम क्या हो सकता है?
शायद अपनी सोच को और पैना करना। हाँ, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, जिसे अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सिर्फ मान न लेना, बल्कि पूछना क्यों, कैसे, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है।
अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश करना, जैसा नीचे कहते हैं। समाज में जो भी चल रहा है, कोई आंदोलन हो, कोई राजनीतिक बहस हो, उसे नीचे के नजरिए से देखने की कोशिश करना भी फायदेमंद हो सकता है।
हाँ, बहुत। लोगों के पीछे की मंशा क्या है? कहीं कोई सत्ता की इच्छा तो काम नहीं कर रही? कहीं कोई दबी हुई कड़वाहट या रेसेंटिमेंट तो नहीं बोल रही? ये हमें चीजों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा वस्तुनिष्ठ तरीके से समझने में मदद कर सकता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ भावनाओं में बह जाएं।
और एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, वो है मुश्किलों का सामना करने का तरीका बदलना।
हाँ, ये बहुत व्यावहारिक अनुप्रयोग है। जब कोई परेशानी आए, कोई चुनौती आए, तो उसे सिर्फ एक दुर्भाग्य या रोने धोने का कारण न समझकर ये देखना कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ,
ये मुझे कैसे मजबूत बना सकती है।
बिल्कुल, जैसे कोई परीक्षा में फेल हो जाए या नौकरी चली जाए, ये बेशक दुखद है, लेकिन क्या ये खुद को बेहतर तरीके से जानने का, अपनी कमियों को समझने का या शायद कुछ नया करने का एक अलग रास्ता चुनने का मौका भी हो सकता है, ये नजरिया बदलना।
और आखिर में शायद सबसे मुश्किल, अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना।
हाँ, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। सब एक जैसे दिखें, एक जैसा सोचें, एक जैसा करें। नीचे हमें अपनी खासियत को, अपनी अलग पहचान को न सिर्फ बनाए रखने बल्कि उसे निखारने और उस पर गर्व करने के लिए कहते हैं। प्रामाणिक होना, ऑथेंटिक होना, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो।
तो इस पूरी गहन चर्चा से हम क्या मुख्य बातें लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ बने बनाए रास्ते पर चलने के लिए या विरासत में मिली नैतिकता को ढोने के लिए नहीं बने हैं। हमारे पास अपने मूल्य खुद बनाने की क्षमता भी है और शायद जिम्मेदारी भी है। ये आज़ादी थोड़ी डराती भी है क्योंकि सारे सहारे हट जाते हैं, पर यह बहुत रोमांचक भी लगती है।
सही कहा। और मेरे लिए ये समझना बहुत अहम रहा कि किसी भी विचार या विश्वास को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि वो क्या है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि वो कहाँ से आया है, उसके पीछे की मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक जड़ें क्या हैं।
हाँ, ये बात।
ये हमें किसी भी चीज को आंख मूंद कर मान लेने या फिर बिना समझे पूरी तरह खारिज कर देने, इन दोनों अतिवादों से बचाता है, एक संतुलित और गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है।
और मुझे नीचे की आलोचनाओं के बावजूद इंसान की क्षमता में एक गहरी उम्मीद दिखती है। उनकी आलोचना बहुत तीखी है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इंसान अपनी सीमाओं को लांघ सकता है, जिंदगी को ज्यादा भरपूर, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा रचनात्मक बना सकता है।
हाँ, वो निराशावादी नहीं थे जैसा कई बार कहा जाता है, वो एक तरह के कठिन आशावादी थे। और मेरे लिए ये एहसास कि अच्छा और बुरा कितने सापेक्ष, कितने लचीले, कितने बनाए हुए हो सकते हैं, ये अपने आप में बहुत ताकत देने वाला विचार है।
हाँ,
ये दुनिया को और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। नीचे हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, है ना? अगर हम भले बुरे की ये पुराने घिसे पिटे चश्मे उतार दें, तो हम दुनिया को कैसे देखेंगे और अपने लिए क्या नए रास्ते, क्या नए मूल्य चुनेंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।